दयाशंकर, आपका फरमान बजा है, पर मैं इस वक्त ना आपके आका की हैसियत में हूँ और न मेरा काम हुक्काम के लिए बेगार पहुँचाना है। मैं तक तशखीम करने आया हूँ और किसी के साथ रूरियात नहीं कर सकता। यह तो आप जानते ही हैं कि मैंने मुफ्त में कलम उठाने का सबक नहीं पढ़ा। किसी पर जबर नहीं करता, सख्ती नहीं करता, सिर्फ काम की मजदूरी चाहता हूँ और खुशी से जो कुछ मुझे मुझसे काम लेना चाहे मेरी उजरत पेश करे। और मुझे महज अपनी फिक्र तो नहीं, मेरे मातहत और भी तो कितने ही छोटी छोटी तनख्वाहों के लोग हैं, उनका गुजर कैसे हो, गांव में अपनी धाक बच जाएगी, इससे मेरा फायदा। आप आसामियों को लूटेंगे, मेरी गरज, गाँव वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वह गरीब तो मेरे पुराने वफादार आसामी हैं। मैं मच्छर नहीं के डंक मारता फिरूँ, कसम खा चुका हूँ कि अब 100 से कम की तरफ निगाह न उठाऊँगा। यह रकम चाहे आप दें या काला चोर दें, मेरे सामने रकम आनी चाहिए, गुना बेलज्जत नहीं कर सकता। गौस खां ने बहुत मिन्नत समाजत की, अपनी हीन दशा का रोना रोया, अपनी दुर्वस्था का पचड़ा गाया, पर दरोगा जी तस से मस न हुए। खां साहब ने लोगों को नीचा दिखाने का निश्चय किया था, इसी में उनका कल्याण था। दरोगा जी के पुर्जार्पण के सिवा अन्य कोई उपाय न था। सोचा, जब मेरी धाक जम गई जाएगी तो ऐसे से कई 100 का वारा न्यारा कर दूंगा। कुछ रुपए अपने संदूक से निकाले, कुछ सुक्कू चौधरी से लिए और दरोगा जी की खिदमत में पेश किए। ये रुपए उन्होंने अपने गांव में एक मस्जिद बनवाने के लिए जमा किए थे। निकालते हुए हार्दिक वेदना हुई, पर समस्या ने विवश कर दिया था। दयाशंकर ने काले काले रुपयों का ढेर देखा तो चेहरा खिल उठा, बोले, यह आपकी फतह है, वह रिपोर्ट लिखता हूँ कि मिस्टर ज्वाला सिंह भी फड़क जाए, मगर आपने यह रुपये जमीन में दफन कर रखे थे क्या? गौस खां, अब हुजूर कुछ न पूछे, बरसों की कमाई है ये पसीने के दाग। दयाशंकर हंसकर, आपके पसीने के दाग तो न होंगे, हाँ आसामियों के खूनों के जिगर के दाग जरूर होंगे। 10 बजे रिपोर्ट तैयार हो गई। 2 दिन तक सारे गांव में कोहराम मचा रहा, लोग तलब हुए, फिर सबके बयान हुए, अंत में सबसे 100-100 रुपए के मुचकले ले लिए गए। कादिर खां का घर से निकलना मुश्किल हो गया। शाम हो गई थी, बाबू ज्वाला सिंह शिकार खेलने गए हुए थे, फैसला कल सुनाया जाने वाला था। गौस खां इजाद हुसैन के पास आकर बैठ गए और बोले, क्या डिप्टी साहब अभी शिकार से वापस नहीं आए? इजाद हुसैन, कहीं घड़ी रात तक लौटेंगे, हुकूमत का मजा तो दौर में ही मिलता है। घंटे आध घंटे कचहरी की, बाकी सारे दिन मटरगस्ती करते रहे, रोजाना मचा भरने को लिख दिया, पड़ताल करते रहे। गौस खां, आपको तो मालूम हुआ होगा दरोगा जी ने मुझे आज खूब पथा। इजाद, इन हिंदुओं से खुदा समझे, यह बला के मुतअस्सिब होते हैं, हमारे साहब बहादुर भी बड़े मुनसिब बनते हैं, मगर जब कोई जगह खाली होती है तो वह हिंदू को ही देते हैं। अर्दली की चपरासी मजीद को आप जानते होंगे, अभी हाल में उसने जिल्दबंदी की दुकान खोल ली, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, आपने उसकी जगह पर एक गंवार अहिर को मुकर्रर कर दिया। है तो अर्दली का चपरासी, पर उसका काम है गायें दुहना, उन्हें चारा पानी देना, दौरे के चौकीदारों में 2 कहार रख लिए, उनसे खिदमतदारी का काम लेते हैं। जब इन हथकंडों से काम चले तो बेगार की जरूरत ही क्या, हम लोगों को अलबत्ता हुक्म मिला है कि बेगार न लिया करो। सूर्य अस्त हुए, खां साहब को याद आ गया कि नमाज का वक्त गुजरा जाता है, वजू किया और एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने लगे। इतने में विशेश्वर शाह से रावटी के द्वार पर आकर अलहमद साहब को अदब से सलाम किया। स्थूल शरीर, गाढ़े की मिर्जई, उस पर गाढ़े की दूहर, सिर पर एक मैली सी पगड़ी, नंगे पांव, मुख मलिन, स्वार्थपूर्ण विनय की मूर्ति बने हुए थे। एक चपरासी ने डांट कर कहा, यहाँ कहाँ घुसे चले आते हो, कुछ अफसरों का अदब लिहाज भी है? विशेषर शाह को 2-3 पग पीछे हट गए और हाथ बांध कर बोले, सरकार मेरी एक विनती है, हुक्म हो तो अर्ज करूँ। इजाद, क्या कहते हो, तुम लोगों के मारे तो दम मारने की भी फुर्सत, जब देखो एक न एक आदमी शैतान की तरह सिर पर सवार रहता है। विशेषर, हजूर बड़ी देर से खड़ा हूँ। इजाद, अच्छा खैर अपना मतलब कहो। विशेषर, यही अर्ज है हजूर की मुझसे मुश्किला न लिया जाए, बड़ा गरीब हूँ सरकार, मिट्टी में मिल जाऊँगा। अहलमद साहब के यहाँ ऐसे गरज के बावले, आँख के अंधे, गांठ के पूरे नित्य ही आया करते थे, वह उनके कल पुर्जे खूब जानते थे। पहले मुंह फेरा, फिर अपनी व्यवस्था प्रकट की, पर भाव ऐसा सील पूर्ण बनाए रखा कि शिकार हाथ से निकल न जाए। अंत में मामले पर आए, रुपए लेते हुए ऐसा मुंह बनाया मानो दे रहे हों। शाह जी को दिलासा देकर विदा किया। चपरासी ने पूछा, क्या इसे मुचलका न लिया जाएगा? इजाद, लिया क्यों नहीं जाएगा, फैसला लिखा हुआ तैयार है। इसके लिए जैसे 100 वैसे 120। मैंने उससे यह हरगिज नहीं कहा कि तुम्हें मुश्किलें में निजात दिला दूंगा, और जितना कह दिया है कि तुम्हारे लिए अपने इम्कान भर कोशिश करूंगा। उसकी तस्कीन पर इतने से ही हो गई तो मुझे ज़्यादा दर्द सर दर्द की क्या ज़रूरत थी। रिश्वत को लोग नाहक बदनाम करते हैं। इस वक्त मैं इससे रुपये न लेता तो इसकी न जाने क्या हालत होती, मालूम नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता और क्या क्या करता। रुपये देकर इसके सिर का बोझ हल्का हो गया है और दिल पर से बोझ उतर गया। इस वक्त आराम से खाएगा और मीठी नींद सोएगा। कल कह दूंगा, भाई क्या करूं, बहुत हाथ पैर मारे पर डिप्टी साहब राजी ही न हुए। मौका देखूंगा तो एक चाल और चलूंगा, कहूंगा डिप्टी साहब को कुछ नज़र दिए बिना काम पूरा ना होगा। 100 रुपये पेश करो तो तुम्हारा मुचलका रद्द करा दूँ, यह चाल चल गई तो पाँव बाहर है। इसी का नाम हम खुरमा व हम सवाब है। मैंने कई ज्यादती नहीं की, कोई जबर नहीं किया, यह गैबी इमदाद है। इसी में मैं हिंदुओं के मसले तनासुब का कायल हूँ। जरूर इससे पहले की ज़िंदगी में इस आदमी पर मेरे कुछ रुपए आते रहे होंगे, खुदा ने इसको अदा करने की सूरत पैदा कर दी। देखते तो हो आए दिन ऐसे शिकार फंसते रहते हैं, गोया उन्हें रुपयों से कोई चिढ़ है। दिल पे उनकी हिमाकत पर हंसता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे बंदे न पैदा करता तो हम जैसों का गुजर क्यों कर होता। राय साहब को नैनीताल आए हुए एक महीना हो गया है। एक सुरम्य झील के किनारे हरे भरे वृक्षों के कुंज में उनका बंगला स्थित है, जिसका 1000 रुपया मासिक किराया देना पड़ता है। कई घोड़े हैं, कई मोटर गाड़ियाँ, बहुत से नौकर। यहाँ वह राजाओं की भांति शान से रहते हैं, कभी हिमराशियों की सैर, कभी शिकार, कभी झील में बजरों की बहार, कभी पोलो और गोल्फ, कभी सरोद और सितार, कभी पिकनिक और पार्टियाँ, नित्य नए जल से नए प्रमोद होते रहते हैं। राज साहब बड़ी उमंग के साथ इन विनोदों की बहार लूटते हैं, उनके बिना किसी महफिल किसी जलसे का रंग नहीं जमता, वह सभी बारातों के दूल्हे हैं। व्यवस्थापक सभा के बैठ के नियमित समय पर हुआ करती हैं, पर मेंबरों के रंगारंग को देख कर अनुमान करना कठिन नहीं कि वह आमोद को अधिक महत्व का विषय समझते हैं या व्यवस्थाओं के संपादन को। किंतु ज्ञान शंकर के हृदय की कली यहाँ भी न खिली। राय साहब ने उन्हें यहाँ के समाज से परिचित करा दिया, उन्हें नित्य दावतों और जलसों में अपने साथ ले जाते, अधिकारियों से उनके गुणों की प्रशंसा करते, यहाँ तक कि उन्हें लेडियों से भी इंट्रोड्यूस कराया। इससे ज़्यादा वह और क्या कर सकते थे, इस भित्ति पर दीवार उठाना उनका काम था। पर उनकी दशा उस पौधे की सी थी जो प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर मालिक की सुव्यवस्था करने पर भी दिनों दिन सूखता जाता है। ऐसा जान पड़ता था कि वह किसी गहन घाटी में रास्ता भूल गए हैं। रत्नजटित लेडियों के सामने वह शिष्टाचार के नियमों के ज्ञाता होने पर भी झेपने लगते थे। राय साहब उन्हें प्रायः एकांत में सब व्यवहार को उपदेश दिया करते थे, स्वयं नमूना बनकर उन्हें सिखाते पुरुषों से क्यों कर बिना प्रयोजन ही मुस्कुराकर बातें करनी चाहिए, महिलाओं के रूप लावण्य की क्यों कर सराहना करनी चाहिए, किंतु अवसर पड़ने पर ज्ञान शंकर का मतिहरण हो जाता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि राय साहब इस वृद्धावस्था में भी लेडियों के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं, किस अंदाज में बातें करते हैं कि बनावट का ध्यान भी नहीं हो सकता, मानो इसी जलवायु में उनका पालन पोषण हुआ है। एक दिन वह झील के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए थे। कई लेडियाँ एक बजरे पर जल क्रीड़ा कर रही थीं। इन्हें पहचान कर उन्होंने इशारा से बुलाया और सैर करने की दावत दी। इस समय ज्ञान शंकर की मुखाकृति देखते ही बनती थी। उन्हें इनकार करने के शब्द न मिले, भय हुआ कि कहीं असभ्यता न समझी जाए। झेपते हुए बजरे में जा बैठे, पर सूरत बिगड़ी हुई, खेद और ग्लानि की सजीव मूर्ति, हृदय पर एक पहाड़ का बोझ रखा हुआ था। लेडियों ने उनकी यह दशा देखी तो आड़े हाथों लिया और इतनी भक्तियाँ कसी, इतना बनाया कि इस समय कोई ज्ञान शंकर को देखता तो पहचान न सकता। मालूम होता था आकृति ही बिगड़ गई, मानो कोई बंदर का बच्चा नटखट लड़कों के हाथों पड़ गया हो। आंखों में आंसू भरे एक कोने में दुबके सिमटे बैठे हुए अपने दुर्भाग्य को रो रहे थे। बारे किसी तरह इस विपत्ति से मुक्ति हुई, जान में जान आई, कान पकड़े की फिलेडियों के निकट न जाऊंगे। शहना शहना ज्ञान संगर को इन खेल तमाशों से अरुचि होने लगी। अंगूर खट्टे हो गए, ईर्ष्या जो अपनी क्षुद्रताओं की स्वीकृति है हृदय का कांटा बन गई। रात दिन इसकी टीस रहने लगी। उच्चाकांक्षाएं उन्हें पर्वत की पाद स्थल तक ले गईं, लेकिन ऊपर न ले जा सके। वही हिम्मत हार कर बैठ गए और उन धुन के पूरे साहसी पुरुषों की निंदा करने लगे जो गिरते ही पड़ते ऊपर चढ़ते चले जाते थे। यह क्या पागलपन है, लोग खामखवा अंग्रेजियत के पीछे लठ लिए फिरते हैं, थोड़ी सी ख्याति और सत्ता के लिए इतना झंझट और इतने रंग रोगन पर भी असलियत का कहीं पता नहीं, सब के सब बहुरूपीय मालूम होते हैं। अंग्रेज लोग इनके मुंह पर चाहे ना हंसे पर मित्र मंडली भी इन पर सब तालियां बजाते होंगे। और तो और लोग लेडियों के साथ नाचने पर भी मरते हैं। कैसी निर्लजता, कैसी बेहयाई, जाति के नाम पर धब्बा लगाने वाली। राय साहब भी विचित्र जीव है, इस अवस्था में आपको भी नाचने की धुन। ऐसा मालूम होता है मानो उच्छृंखलता सदैव होकर दूसरे को मुंह चिढ़ा रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर कहने को तो दर्शन की ज्ञाता है, पुरुष और प्रकृति जैसे गहन विषयों पर लक्षदार वक्तृत्ताएं देते हैं, लेकिन नाचने लगते हैं तो सारा पांडित्य धूल में मिल जाता है। वह जो राजा साहब है इंद्र कुमार सिंह, मटके की भांति तो निकली हुई है, लेकिन आप भी नृत्य कौशल दिखाने पर उधार खाए हुए हैं। और तुर्रा यह कि सबके सब जाति के सेवक और देश के भक्त बनते हैं, जिसे देखिए भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आता है। यह लोग विलायत होटलों में शराब और लेमोनेड पीते हुए देश की दरिद्रता और अधोगति का रोना रोते हैं। यह भी फैशन में दाखिल हो गया है। इस भांति ज्ञान शंकर की ईर्ष्या देशानुराग के रूप में प्रकट हुई। असफल लेखक समालोचक बन बैठा, अपनी असमर्थता ने साम्यवादी बना दिया। यह सभी रंगे हुए सियार हैं, लुटेरों का जत्था है। किसी को खबर नहीं कि गरीबों पर क्या बीत रही है, किसी के हृदय में दया नहीं। कोई राजा है, कोई ताल्लुकेदार, कोई महाजन, सभी गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों के झोपड़ों में सेंध मारते हैं और यहाँ आकर देश की अवनति का पचड़ा गाते हैं। भला ही है कि अधिकारी वर्ग इन महानुभावों को मुँह नहीं लगाते। कहीं वह इनकी बातों में आ जाए और देश का भाग्य इनके हाथों में दे दें तो जाति का कहीं नामो निशान भी न रहे। यह सब दिन दहाड़े लूट खाएं। कोई इन भले मानसों से पूछे, आज जो आप लाखों रुपए शहर सपाटों में उड़ा रहे हैं उससे जाति का क्या लाभ हो रहा है। यही धन यदि जाति का अर्पण करते तो जाति तुम्हें धन्यवाद देती और तुम्हें पूछती, नहीं तो उसे खबर भी नहीं कि तुम कौन हो और क्या करते हो। उसके लिए तुम्हारा होना न होना दोनों बराबर है। प्रार्थियों को इस बात से संतोष नहीं होता कि तुम दूसरों से सिफारिश करके उसे कुछ दिला दोगे, उसे संतोष होगा जब तुम स्वयं अपने पास से थोड़ा सा निकाल कर उसे दे दो। ये द्रोहात्मक विचार ज्ञान शंकर के चित्त को मथने लगे, वाणी उन्हें प्रकट करने के लिए व्याकुल होने लगे। एक दिन वह डॉक्टर चंद्रशेखर से उलझ पड़े। इसी प्रकार एक दिन राजा इंद्र कुमार से विवाद कर बैठे और मिस्टर हरिदास बैरिस्टर से तो एक दिन हाथापाई की नौबत आ गई। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने ज्ञान शंकर का बहिष्कार करना शुरू किया, यहाँ तक कि राय साहब के बंगले पर आना भी छोड़ दिया। किंतु जब ज्ञान शंकर ने अपने विचारों को एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित कराया तो सारे नैनीताल में हलचल मच गई। जिसके मस्तिष्क से ऐसे उत्कृष्ट भाव प्रकट हो सकते थे उसे झक्की या बक्की समझना असंभव था। शैली ऐसी सजीव, चुटकियाँ ऐसी तीव्र, व्यंग ऐसे मीठे और उक्तियाँ ऐसी मार्मिक की लोगों को अपनी चोटों में भी आनंद आता था। नैनीताल समाज का एक बृहत चित्र था। चित्रकार ने प्रत्येक चित्र में के मुख पर उसका व्यक्तित्व ऐसी कुशलता से अंकित कर दिया था कि लोग मन ही मन कट कर रह जाते थे। लेख में ऐसे कटाक्ष थे कि उसके कितने ही वाक्य लोगों की जबान पर चढ़ गए। ज्ञान शंकर को शंका थी कि यह लेख छपते ही समस्त नैनीताल उनके सिर हो जाएगा, किंतु यह शंका निसार सिद्ध हुई। जहाँ लोग उनका निरादर और अपमान करते थे वहाँ अब उनका आदर और मान करने लगे। एक एक करके लोगों ने उनके पास जाकर अपने अभिनय की क्षमा मांगी। सबके सब एक दूसरे की गई चोटों का आनंद उठाते थे। डॉक्टर चंद्रशेखर और राजा इंद्र कुमार में बड़ी घनिष्ठता थी, किंतु राजा साहब पर दोमुए सांप की फफती डॉक्टर महोदय को लोटपोट कर देती थी। राजा साहब की भी डॉक्टर महोदय की प्रौढ़ा से उपमा पर मुग्ध हो जाते थे। उनकी घनिष्ठता इस द्वेष में आनंद में बाधक न होती थी। यह चोटें या चुटकियाँ सर्वथा निष्फल न हुई, शहर तमाशों में लोगों का उत्साह कुछ कम हो गया। अगर अंतकरण से नहीं तो केवल ज्ञान शंकर को खुश करने के लिए लोग उनसे सार्वजनिक प्रस्तावों में सम्मति लेने लगे। ज्ञान शंकर का साहस और भी बढ़ा, वो खुल्लम खुल्ला लोगों को पटकार सुनाने लगे। निंदक से उपदेशक बन बैठे, उनमें आत्मगौरव का भाव उदय हो गया। अनुभव हुआ कि इन बड़े बड़े उपाधिधारियों और अधिकारियों पर अपनी सुगमता से प्रभुत्व जमाया जा सकता है। केवल एक लेख ने उनकी धाक बिठा दी। सेवा और दया के जो पवित्र भाव उन्होंने विचित्रित किए, उनका स्वयं उनकी आत्मा पर भी असर हुआ। पर शोक इस अवस्था का शीघ्र ही अंत हो गया। कुंवर का आरंभ होते नैनीताल से डेरे कूच होने लगे और आधे कुंवर तक अवस्थी उजाड़ हो गई। ज्ञान शंकर फिर उसी कुटिल स्वार्थ की उपासना करने लगे। उनका हृदय दिनों दिन कृपण होने लगा। नैनीताल में भी वह मन ही मन राय साहब की फिजूल खर्चियों पर कुल बुड़ाया करते थे। लखनऊ आकर उनकी संगीनता शब्दों में व्यक्त होने लगी। जुलाहे का क्रोध दाढ़ी पर उतरता, कभी मुख्तार से, कभी मुहर्रिर से, कभी नौकर से उलझ पड़ते। तुम लोग रियासत लूटने पर तुले हुए हो, जैसे मालिक वैसे नौकर, सभी की आंखों में सरसों फूली हुई है। मुफ्त का क्या माल उड़ाते क्या लगता है, जब पसीना मार के कमाते तो खर्च करते भी अखर होते। राय साहब रामलीला सभा के प्रधान थे। इस अवसर पर 1000 रुपये खर्च करते, नौकरों की नई नई वर्दियाँ मिलती, रईसों की दावत की जाती, राजगद्दी के दिन पर भोज किया जाता। ज्ञान शंकर यह धन का अपव्यय देखकर जलते रहते। दीप मालिका के उत्सव की तैयारियां देखकर वह ऐसे हताश हुए कि एक सप्ताह के लिए इलाके की सैर करने चले गए। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस के दिन। राय साहब अंग्रेज अधिकारियों को डालियां देने की तैयारियों में तल्लीन हो रहे थे। ज्ञान शंकर उन्हें डालियां सजाते देखकर इस तरह मुंह बनाते मानो वह कोई महाघृणित काम कर रहे हैं। कभी कभी दबी जबान से उनकी चुटकी भी ले लेते, उन्हें छेड़कर तर्क वितर्क करना चाहते। राय साहब पर इन भावों का जरा भी असर न होता। वह ज्ञान शंकर की मनोवृत्तियों से परिचित जान पड़ते थे। शायद उन्हें जलाने के लिए ही वह इस समय इतने उत्साहशील हो गए थे। यह चिंता ज्ञान शंकर की नींद हराम करने के लिए काफी थी। उस पर जब उन्हें विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ कि राय साहब पर 2 लाख का कर्ज है, तो वह नैराश्य से विह्वल हो गए। एक उद्विग्न दशा में विद्या के पास आकर बोले, मालूम होता है यह मरते दम तक कौड़ी कफन को न छोड़ेंगे। मैं आज ही इस विषय में इसे साफ साफ बातें करूंगा और कह दूंगा कि यदि आप अपना हाथ न रोकेंगे तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा कर डालूंगा। विद्या, उनकी जायदाद है, तुम्हें रोक टोक करने का क्या अधिकार है? कितना ही उड़ाएंगे तब भी हमारे खाने भर को बचा ही रहेगा। भाग्य में जितना बदा है उससे अधिक थोड़े ही मिलेगा। ज्ञान, भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी तबाही तो नहीं दिखी जाती? विद्या, भैया जीते होते तब? ज्ञान, तब दूसरी बात थी। मेरा इस जायदाद से कोई संबंध न रहता, मुझको उसके बनने बिगड़ने की चिंता न रहती। किसी चीज पर अपनी ही छाप लगते ही हमारा उससे आत्मिक संबंध हो जाता है। किंतु हाँ, दुर्देव, ज्ञान शंकर की विशाल चिंताओं का यही अंत न था। अभी तक उनकी स्थिति एक आक्रमणकारी सेना की सी थी। वह अपने घर का कोई खटका न था, अब दुर्भाग्य से उनके घर पर छापा मारा। उनकी स्थिति रक्षाकारिणी सेना की सी हो गई। उनके बड़े भाई प्रवीण शंकर कई वर्षों से लापता थे। ज्ञान शंकर को निश्चय हो गया था कि अब वो संसार में नहीं है। फाल्गुन का महीना था। अनायास प्रेम शंकर का एक पत्र अमेरिका से आ पहुंचा कि मैं 1 अप्रैल को बनारस पहुंच जाऊंगा। यह पत्र पाकर पहले तो ज्ञान शंकर प्रेमोल्लास में मग्न हो गए। इतने दिनों के वियोग के बाद भाई से मिलन की आशा ने चित्त को गदगद कर दिया। पत्र लिए हुए विद्या के पास आकर यह शुभ समाचार सुनाया। विद्या बोली, धन्यवाद, भाभी जी की मनोकामना ईश्वर ने पूरी कर दी। इतने दिनों कहाँ थे? ज्ञान, वहीं अमेरिका में कृषि शास्त्र का अभ्यास करते रहे। 2 साल तक एक कृषिशाला में काम भी किया है। विद्या, तो आज अभी 25 तारीख है, हम लोग कल परसों तक यहाँ से चल दें? ज्ञान शंकर ने इतना कहा, हाँ और क्या, और बाहर चले गए। उनकी प्रफुल्लता एक ही क्षण में लुप्त हो गई और नई चिंताएं आंखों के सामने फिरने लगी थी। जैसे कोई जीर्ण रोगी किसी उत्तेजक औषधि के असर से एक क्षण के लिए चैतन्य होकर फिर उसी जीर्ण अवस्था में विलीन हो जाता है। उन्होंने अब तक जो मनसूबे बांधे थे, जीवन का जो मार्ग स्थिर किया था, उसमें अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जगह न रखी थी। वह सब कुछ अपने लिए चाहते थे। अब इन व्यवस्थाओं में बहुत कुछ काट छांट करने की आवश्यकता मालूम होती थी। संभव है जायदाद का फिर से बंटवारा करना पड़े। दीवान खाने में 2 परिवारों का निर्वाह होना कठिन था। लखनपुर के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे। जो जो वह इस विषय का विचार करते थे, समस्या और भी जटिल होती जाती थी, चिंताएँ और भी विषम होती जाती थी। यहाँ तक कि शाम होते होते उन्हें अपनी अवस्था असह्य प्रतीत होने लगी। वे अपने कमरे में उदास बैठे हुए थे कि राय साहब आकर बोले, वाह, तुमने तो अभी कपड़े भी न पहने, क्या सैर करने न चलोगे? ज्ञान, जी नहीं, आज जी नहीं चाहता। राय, कैसरबाग में आज बैंड होगा, हवा कितनी प्यारी है। ज्ञान, मुझे आज क्षमा कीजिए। राय, अच्छी बात है, मैं भी न जाऊंगा। आजकल कोई लेख लिख रहे हो या नहीं? ज्ञान, जी नहीं, इधर तो कुछ नहीं लिखा। राय, तो अब कुछ लिखो, विषय और सामग्री मैं देता। सिपाही की तलवार में मोर्चा न लगना चाहिए, भला लेख तो इस साल के बजट पर लिख दो और दूसरा गायत्री पर। ज्ञान, मैंने तो आजकल कोई बजट संबंधी लेख आद्योपांत पढ़ा तक नहीं, उस पर कलम क्यों कर उठाऊं? राय, अजी तो उसमें करना ही क्या है, बजट को कौन पढ़ता है और कौन समझता है? आप केवल शिक्षा के लिए और धन की आवश्यकता दिखाइए और शिक्षा के महत्व का थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। स्वास्थ्य रक्षा के लिए और धन मांगिए और उसके मोटे मोटे नियमों पर 2-4 टिप्पणियाँ कर दीजिए। पुलिस के व्यय में वृद्धि अवश्य ही हुई होगी, मानी हुई बात है, आप उसमें कमी पर जोर दीजिए और नई मोहरे नारे निकालने की आवश्यकता दिखाकर लेख समाप्त कर दीजिए। बस अच्छी खासी बजट की समालोचना हो गई, लेकिन यह बातें ऐसे विनम्र शब्दों में लिखिए और अर्थ सचिव की योग्यता का और कार्यपरता की ऐसी प्रशंसा कीजिए कि वह बुलबुल हो जाए और समझे कि मैंने उसके मंतव्यों पर खूब विचार किया है। शैली तो आपके सजीव है ही, इतना यत्न और कीजिए कि एक एक शब्द से मेरी बहुज्ञता और पांडित्य टपके, इतना बहुत है। हमारा कोई प्रस्ताव माना तो जाएगा नहीं, फिर बजट के लेखों को पढ़ना और उस पर विचार करना व्यर्थ है। ज्ञान, और गायत्री देवी के विषय में क्या लिखना होगा? राय, बस एक संक्षिप्त सा जीवन वृत्तांत हो, कुछ मेरे कुल का, कुछ उसके कुल का हाल लिखिए, उसकी शिक्षा का जिक्र कीजिए, फिर उसके पति की मृत्यु का वर्णन करने के बाद उसके सुप्रबंध और प्रज्ञा रंजन का जरा बढ़ाकर विस्तार के साथ उल्लेख कीजिए। गत 3 वर्षों में विविध कार्यों में उसने जितने चंदे दिए हैं और अपने असामियों की सुदशा के लिए जो व्यवस्थाएं की है, उसके नोट मेरे पास मौजूद है, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उस ढांचे को सजीव और सुंदर बनाना आपका काम है। अंत में लिखिएगा कि ऐसे सुयोग्य और विदुषी महिला का अब तक किसी पद से सम्मानित न होना शासनकर्ताओं का गुण ग्राहकता का परिचय नहीं देता है। सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें किसी उचित उपाधि से विभूषित करके सत्कार्यों में प्रोत्साहित करें, लेकिन जो कुछ लिखिए जल्द लिखिए, विलम्ब से काम बिगड़ जाएगा। ज्ञान, बजट की समालोचना है तो मैं कल तक लिख दूंगा, लेकिन दूसरे लेख में अधिक समय लगेगा। मेरे बड़े भाई जो बहुत दिनों से गायब थे, पहली तारीख को आ रहे हैं। उनके आने से पहले हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। राय, वह तो अमेरिका चले गए थे। ज्ञान, जी हाँ, वहीं से पत्र लिखा है। राय, कैसे आदमी है? ज्ञान, इस विषय में क्या कह सकता हूँ, आने पर मालूम होता है कि उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ है। यूँ तो बहुत शांत प्रकृति और विचारशील थे। राय, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका की जलवायु बंधु प्रेम के भाव की पोषक नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ वहाँ के जीवन का मूल तत्व है और आपके भाई साहब पर उसका असर जरूर ही पड़ा होगा। ज्ञान, देखना चाहिए, मैं अपनी तरफ से तो उन्हें शिकायत का कोई मौका न दूंगा। राय, आप दे या न दे, वह स्वयं ढूंढ निकालेंगे। संभव है मेरी शंका निर्मूल हो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि निर्मूल हो, पर मेरा अनुमान है कि विदेश में बहुत दिनों तक रहने से प्रेम का बंधन शिथिल हो जाता है। ज्ञान शंकर, अब अपने मनोभावों को छिपा न सके, खुलकर बोले, मुझे भी वही भय है। जब 6 साल से मैं अपने घर पर एक पत्र भी नहीं लिखा, तो विधि थी यह कि उनमें आत्मीयता का आधिक्य नहीं है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे क्या पर्दा। इनके आने से मेरे सारे मनसूबे मिट्टी में मिल गए। मैं समझता था चाचा साहब से अलग होकर 2-4 वर्षों में मेरी दिशा को सुधर जाएगी। मैंने चाचा साहब को अलग होने पर मजबूर किया, जायदाद भी बांट ली। अब इच्छा के अनुसार ही उस जिसके लिए चाचा साहब के संतान मुझे सदैव कोसती रहेगी, किंतु सब किया करा बेकार हो गए। राय साहब, कहीं उन्होंने गत वर्षों के मुनाफों का दावा कर दिया तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इस विषय में वकीलों की सम्मति लिए बिना आप कुछ न कीजिएगा। इस बात ज्ञान शंकर की शंकाओं को उत्तेजित करने में राय साहब का आशय क्या था, इसको समझना कठिन है। शायद वह उनकी हृदयगत भावों की थाह लेना चाहते थे, अथवा उनकी क्षुद्रता और स्वार्थपरता का तमाशा देखने का विचार था। वह तो यह चिंगारी दिखाकर हवा खाने चले गए। बेचारे ज्ञान शंकर अग्निदाह में चलने लगे। उन्हें इस समय नाना प्रकार की शंकाएं हो रही थी। उनका वह तत्क्षण समाधान करना चाहते थे, क्या भाई साहब गत वर्षों के मुनाफों का दावा कर सकते हैं? यदि वह ऐसा करें तो मेरे लिए भी निकास का कोई उपाय है या नहीं? क्या राय साहब को अधिकार है कि वह रियासत पर ऋणों को बोझ को लादते जाएं? उनकी फिजूल खर्ची को रोकने की कोई कानूनी तदबीर हो सकती है या नहीं? इन प्रश्नों की ज्ञान शंकर के चित्त में घोर अशांति हो रही थी। उनकी मानसिक वृत्तियां जल गईं। वह उठकर राय साहब को पुस्तकालय में गए और कानून की किताब निकालकर देखने लगे। इस किताब से शंका निवृत्त न हुई। दूसरी किताब निकाली, यहाँ तक कि थोड़ी देर में बेंच पर किताबों का ढेर लग गया। कभी इस पोथी के पन्ने उलटते थे, कभी उस पोथी की, किंतु किसी प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर न मिला। हताश होकर वे इधर उधर ताकने लगे। घड़ी पर निगाह पड़ी, 10 बजा चाहते थे। किताबें समेट कर रख के भोजन किया, लेटे, किंतु नींद कहाँ। चित्त की चंचलता निद्रा के बाधक है। अब तक वह स्वयं अपने जीवन सागर के रक्षा तट थे। उनकी सारी आकांक्षाएँ और कामनाएँ इसी तट पर विश्राम किया करती थी। प्रेमशंकर ने आकर इस रक्षा तट को विध्वंस कर दिया था और उन नौकाओं को डबाडोल। भैया क्यों कर काबू में आएंगे? खुशामद से कठिन है, वह एक ही घाघ है, नम्रता और विनय से असंभव। नम्रता का जवाब सद्व्यवहार से हो सकता है, स्वार्थ त्याग नहीं, फिर क्या कला और अपवाद से? कदापि नहीं। इससे मेरा पक्ष और भी निर्बल हो जाएगा। इस प्रकार भटकते भटकते सहसा ज्ञान रंजन को, ज्ञान शंकर को एक मार्ग दिख पड़ा और वह हर्षोन्मत होकर उछल पड़े। वाह, मैं भी कितना मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ। बिरादरी इन महाशय को घर में पैर तो रखने देगी नहीं, यह बेचारे मुझसे क्या छेड़छाड़ करेंगे। आश्चर्य रहे, अब तक यह मोटी सी बात भी मेरे ध्यान में न आई। राय साहब को भी न सोची। बनारस आते ही लाला पर चारों ओर से बौछारें पड़ने लगेंगे, उनके यहाँ पैर भी न थमने पाएंगे। प्रकट में मैं उनसे अपने भ्रातृत्व व्यवहार करता रहूँगा, बिरादरी के संगणता और अन्याय पर आंसू बहाऊंगा, लेकिन परोक्ष में उसकी कील घुमाता रहूंगा। महीने दो महीने में आप ही भाग खड़े होंगे, शायद श्राद्ध भी उनसे खींच जाए। उसे कुछ उत्तेजित करना पड़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है, लोकमत का असर उस पर अवश्य पड़ेगा। बस मेरा मैदान साफ है, इन महाशय से डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं निर्भय होकर भ्रातृ स्नेह का आचरण कर सकता। इस विचार से ज्ञान शंकर इतने उत्फुल्ल हुए कि जी चाह चलकर विद्या को जगाऊं पर जब्त से काम किया। इस चिंता सागर से निकलकर अब उन्हें शंका होने लगी थी कि गायत्री की अप्रसन्नता भी मेरा भ्रम है, मैं स्त्रियों के मनोभावों से सर्वथा अपरिचित हूँ। संभव है मैंने उतावलापन किया हो, पर यह कोई ऐसा अपराध न था कि गायत्री उसे क्षमा न करती। मेरे दुस्साहस पर अप्रसन्न होना उसके लिए स्वाभाविक बात थी, कोई गौरवशाली रमणी इतनी सहज रीति से वशीभूत नहीं हो सकती। अब सतीत्व रक्षा का विचार स्वभावतः उसकी प्रेम वासना को दबा देता है। ऐसा न हो तो भी वह अपनी उदासीनता और अनिच्छा प्रकट करने के लिए कठोरता का स्वांग भरना आवश्यक समझती है, शायद इससे उसका अभिप्राय प्रेम परीक्षा होता है। वह एक अमूल्य वस्तु है और अपनी दर गिराना नहीं चाहती। मैं असफलता से ऐसा दबा कि फिर से सिर उठाने की हिम्मत ही न पड़ी। वह यहाँ कई दिन रही, मुझे जाकर उसे क्षमा मांगनी चाहिए थी। वह क्रुद्ध होती तो मुझे झिड़क देती, वह स्वयं निर्दोष बनना चाहती है और सारा दोष मेरे सिर रखती। मुझे यह वाक प्रहार सहना चाहिए था और थोड़ी दिनों में मैं उसके हृदय का स्वामी होता। यह तो मुझसे हुआ नहीं, उल्टे आप ही रूठ बैठा, स्वयं उससे आंखें चुराने लगा। उसने अपने मन में मुझे मोदा, साहसी, निराबुद्धू समझा होगा। खैर, अब कसर पूरी हुई जाती है, यह मानो अंतः प्रेरणा है। इस जीवन चरित्र के निकलते ही उसकी अवज्ञा और अभिमान का अंत हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा पर जान देती है। राय साहब स्वयं गायत्री के भेष में अवतरित हुए हैं। उसकी आकांक्षा पूरी हुई तो फूली न समाएगी, और जो कहीं रानी की पदवी मिल गई तो वह मेरा पानी भरेगी। भैया के झमेले से छुट्टी पाऊँ तो यह लेख शुरू करूँ। मालूम नहीं अपने पत्रों में कुछ मेरा कुशल समाचार भी पूछती है या नहीं। चलूँ विद्या से पूछूँ, अब की वह इस प्रबल इच्छा को न रोक सके। विद्या बगल के कमरे में सोती थी, जाकर उसे जगाया। वह चौंक कर उठ बैठी और बोली, क्या है, क्या अभी तक सोई नहीं? ज्ञान, आज नींद नहीं आती, बात करने का जी चाहता है। राय साहब शायद अभी तक नहीं आए। विद्या, वह 12 बजे के पहले कभी आते हैं कि आज ही आ जाएंगे? कभी कभी तो 1-2 बज जाते हैं। ज्ञान, मुझे जरा से झपकी आ गई थी, क्या देखता हूँ गायत्री सामने खड़ी है, फुट फुट कर रो रही, आंखें खुल गई। तब से करवटें बदल रहा हूँ, उनकी चिट्ठियाँ तो तुम्हारे पास आती हैं ना? विद्या, हाँ, सप्ताह में एक चिट्ठी जरूर आती है, बल्कि मैं जवाब देने में पिछड़ जाती हूँ। ज्ञान, अभी कुछ मेरा हालचाल भी पूछती है? विद्या, वाह, ऐसा कोई पत्र नहीं होता जिसमें तुम्हारी कुशल क्षेम न पूछती हो। ज्ञान, बुलाती तो एक बार उनसे जाकर मिलाता। विद्या, तुम जाओ तो वह तुम्हारी पूजा करें, तुमसे उन्हें बड़ा प्रेम है। ज्ञान शंकर को अब भी नींद नहीं आई, किंतु सुख स्वप्न देख रहे थे।